ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से उप प्रधानमंत्री और मंत्रियों के बीच हुआ कार्य संपादन समझौता, तय लक्ष्य हासिल करने के हिसाब से काम करने का मंत्रियों को प्रधानमंत्री ने किया निर्देश, संवैधानिक परिषद बैठक समसामयिक राजनीतिक लगायत के विषयों में प्रमुख तीन दलों के बीच शीर्ष नेताओं के बीच हुआ विचार विमर्श, अन्य पार्टियों को कमजोर करने की नीति कांग्रेस और एमाले की नहीं है नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा का कथन, और मलेशिया में पुलिस ने 402 नाबालिगों को शेल्टर होम से किया रेस्क्यू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ चालू आर्थिक वर्ष में किए जाने वाले मुख्य कार्यों और हासिल की जाने वाली उपलब्धियों के लिए उप प्रधानमंत्री द्वय और मंत्रियों के बीच आज कार्य संपादन समझौता हुआ। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में आयोजित एक कार्यक्रम में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। उस अवसर पर प्रधानमंत्री ओली ने समन्वय के साथ रचनात्मक तरीके से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का कार्य पूरा करने का मंत्रियों को निर्देश किया। प्रधानमंत्री ओली ने योजनाओं और लक्ष्यों के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर राष्ट्र और लोगों के सर्वोत्तम हित में उत्पादन कार्य करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ओली ने मंत्रियों से पूर्व मंत्रियों के अनुभव से सीखने और ऐसे काम करने को कहा जो समझौते में नहीं है लेकिन देश के लिए किए जाने चाहिए। इसी तरह प्रधानमंत्री और नेपाल सरकार के मुख्य सचिव एक नारायण आर्याल के बीच कार्य संपादन समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संवैधानिक परिषद की बैठक की तैयारी और समसामयिक राजनीतिक विषयों में नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा और नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड से विचार विमर्श किया है। आज प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में उनके बीच विचार विमर्श हुआ, यह जानकारी प्रधानमंत्री के सचिवालय ने दी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने विश्वभर में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम जनशक्ति तैयार करने का राजर्षि जनक विश्वविद्यालय को आग्रह किया है। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में हुई विश्वविद्यालय की 8वीं साधारण सभा बैठक में प्रधानमंत्री ओली ने ऐसा आग्रह किया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि नेपाल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निजी क्षेत्र के लिए उचित निवेश के माहौल बनाने के लिए सरकार तैयार है। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ और निवेश बोर्ड की संयुक्त परियोजना के तहत आज काठमांडू में शुरू हुए 2 दिवसीय नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन के 5वें संस्करण को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने स्पष्ट किया कि वह निजी क्षेत्र के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार है। सम्मेलन में उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौड़ेल ने कहा कि सरकार की नीति प्राथमिकता के साथ पूर्वाधार विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाना सरकार की नीति है। उप प्रधानमंत्री पौड़ेल ने पूर्वाधार विकास के लिए आवंटित बजट का आधार बढ़ाने का वादा किया। संसदीय सुनवाई समिति ने विभिन्न देशों के लिए प्रस्तावित 17 राजदूतों की संसदीय सुनवाई पूरी कर ली है। समिति भाद्र 30 गते की बैठक में प्रस्तावित राजदूतों पर फैसला लेने जा रही है। समिति ने आज स्पेन, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रस्तावित राजदूतों के साथ सुनवाई की। बीते श्रावण 14 गते सरकार ने विभिन्न 17 देशों के लिए राजदूतों के नाम सिफारिश की थी। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने कहा कि मौजूदा सरकार का गठन अन्य राजनीतिक दलों को कमजोर करने की नीति के तहत नहीं किया गया है। पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा ललितपुर में उत्कृष्ट नगरपालिकाओं और गांवपालिकाओं के सम्मान कार्यक्रम में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस और एमाले के पास 2 प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए विलय के बाद अन्य दलों को कमजोर करने की नीति नहीं है। सभापति देउवा ने स्पष्ट किया कि वे सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और कांग्रेस और एमाले की सरकार बनने के बाद पूरे देश में उत्साह है। सभापति देउवा ने कहा कि अब समय आ गया है कि वे हर चीज से संन्यास ले लें और नए नेताओं को पार्टी और देश का ख्याल रखने दें। सभापति देउवा ने कहा कि आने वाले दिन एक चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण अवसर है और उन्होंने दोनों से मिलकर आगे बढ़ने का आग्रह किया। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
है त पनि एनटीसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। पर्व त्योहार के लक्षित कर सहूलियत मोल की दुकान आने वाले आश्विन 7 गते से छठ तक संचालित रहेगी। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय ने नेपाल आयल निगम, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी, साल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और दुग्ध विकास संस्थान के परिपत्र करते हुए पर्व त्योहार लक्षित सहूलियत दुकानें संचालन करने के लिए आग्रह किया है। आम उपभोक्ता को समय पर ध्यान में रखते हुए अत्यावश्यक खाद्य तथा उपभोग्य वस्तु सहूलियत मोल में उपलब्ध कराने के लिए इस अवधि तक सहूलियत मोल की दुकानें संचालन में लाई जा रही है। ये जानकारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय ने दी। राष्ट्रीय बाल दिवस के उपलक्ष्य पर रेडियो नेपाल और नेपाल बाल संगठन के संयुक्त आयोजन में कल राष्ट्रीय बाल गीत प्रतियोगिता होने जा रही है। प्रतियोगिता को रेडियो नेपाल द्वारा कल सुबह 11 बजे के समाचार के बाद नेपाल बाल संगठन के केंद्रीय कार्यालय नक्साल से प्रत्यक्ष प्रसारण की जाएगी। भूस्खलन के कारण कर्णाली राजमार्ग पुनः अवरूद्ध बना हुआ है। कल रात के भारी बारिश के कारण कर्णाली राजमार्ग अंतर्गत कालीकोट के शुभ कालिका गांव पालिका वार्ड नंबर 1 स्थित गगने नदी और इस मोड़ में भूस्खलन आने से सड़क पूर्ण रूप से अवरुद्ध बना हुआ है। ये जानकारी जुमला स्थित सड़क डिवीजन कार्यालय के सूचना अधिकारी वीर बहादुर जीटी ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मलेशिया में पुलिस ने बुधवार को 402 नाबालिगों को शेल्टर होम से रेस्क्यू किया है। आरोप है कि इन शेल्टर होम्स में नाबालिग बच्चों और किशोरी का यौन शोषण हुआ है। पीड़ितों की उम्र 1 से 17 साल के बीच है। पुलिस ने सेलगोर और नगेरी सेम्बिलन राज्य के ऐसे 20 वेलफेयर होम्स में छापे मारे। इस मामले में 171 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें धार्मिक गुरु और केयर टेकर शामिल है। पत्रकारों से बातचीत में पुलिस इंस्पेक्टर जनरल रज्जारुद्दीन हुसैन ने बताया कि आरोप है कि पीड़ितों को अलग अलग ढंग से प्रताड़ित किया गया है, उनका यौन शोषण हुआ है। कथित तौर पर इन शेल्टर होम्स के तार एक इस्लामिक संस्था से जुड़े हुए हैं। अभी के लिए पीड़ितों को कुआलालंपुर के पुलिस सेंटर में रखा जाएगा और उनका हेल्थ चेकअप होगा। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से उप प्रधानमंत्री और मंत्रियों के बीच हुआ कार्य संपादन समझौता। तय लक्ष्य हासिल करने के हिसाब से काम करने का मंत्रियों को प्रधानमंत्री ने किया निर्देश। संवैधानिक परिषद बैठक समसामयिक राजनीतिक लगायत के विषयों में प्रमुख 3 दलों के शीर्ष नेताओं के बीच हुआ विचार विमर्श। अन्य पार्टियों को कमजोर करने की नीति कांग्रेस और एमाले की नहीं है, नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देवबा का कथन। और मलेशिया में पुलिस ने 402 नाबालिगों को शेल्टर होम से किया रेस्क्यू। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।